के इस पार में मथुरा और उस पार में गोकुल, कितनी दूरी है? सुई की रेखा जो होती है उससे कम की, किंतु बड़ी दूर है। बीच में क्या है? जमुना है ना। जमुना का समझ लो कि हमारा मन है। एक तरफ में कृष्ण है और एक तरफ में माया है और बीच में ये मन है। अरे भाई जाने
तुम लोगों की जो मालिक
जीव के अंतर में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक साथ में है, किंतु ऐसा बहुत दूरी पार नहीं किया जा सकता। यही इसी का नाम संसार। इसी मन में ही मैं और मेरा ये दो चीज है। मैं हूं ये शरीर, मेरा ये संसार। कभी इसे उगता है, कभी रूठता है और कभी इसी में आसक्त होकर के रस बच जाता है। ये सभी मनोधर्म है। इन मनोधर्म से जहां मन को हटाया बस कृष्ण और उन्हें दूरी नहीं है। देखिए थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं गोकुल कितना दूरी पर है। गोकुल नगरी बड़ी दूर है। जमुना में तो एक धारा है ना, किंतु वहां पर काम क्रोध मद वो इसके अतिरिक्त अनर्थ कितने प्रकार के अपराध, कितनी प्रकार की अज्ञानताएं, लाखों प्रकार की ये चीजें है तो बहुत कम, किंतु बहुत दूर वो लगती है। इनको पार करना सहज नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने को पंडित समझता है और सब माना तुम ही करने वाला है, तो फिर हमसे पूछता क्यों है, मैं क्या करूं? तो इसलिए सबसे पहले ये सोचो, ये चीज को रखो, करने वाला मैं हूं, तू नहीं है। ये संसार का सृजन किसने किया? हमने तो किया नहीं। इसलिए इसको गरज है। कौन करने वाला? हम करने वाले नहीं है। हम एक स्टैचू है, इससे कुछ आगे नहीं हम है। मन भी उन्हीं का दिया हुआ है, जन्म उन्हीं का दिया हुआ है, ये बुद्धि वृत्ति उन्हीं की दी हुई है, सब कुछ उन्हीं की है। बस उनका एक खिलौना बन जाओ बस, तब तो हो गया पार, तब तो गोकुल नगरी में पहुंच जाएंगे। लाखों कोटि जन्म लग जाएंगे उसमें ही भ्रमण करते करते करते। इसलिए सबसे पहले उसके ऊपर में आत्मसमर्पण करूंगे। प्रभु जब आप विश्व का सृजन किया, सबका पालन करते हैं, गर्भ में भी पालन करते हैं और उसी आप ही की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। समुद्र में तरंगे जो चलती हैं वो सब आपकी इच्छा, ऋतु में आप ही की इच्छा से सब चलती है। सूरज ठीक समय पर उगता है, ये कौन व्यवस्था करता है? हमारी व्यवस्था तो वो करेगा, उसी ने तो सब कुछ किया है। फिर झूठ मूठ का इतना समस्याएं क्यों लाते हो? जैसा कराता वैसा करता चलूंगा, तब फिर वो करने लग जाएगा हमारे लिए। और जब तक शरणागत नहीं होंगे छोड़ देता है। लो करो, लाख जन फटकने पर तब अकल आएगी, तब फिर तुम करना। इसलिए सबसे पहले उनके शरणागत होगा, तब ना माला फेरत गया, गया न मन का, मन का मन का कर का मन का छोड़ कर मन को ठीक कर पाएंगे। कुछ लोग चिढ़ते हैं, साधु लोग नहीं समझते हैं इसका उद्देश्य, किंतु बात तो ठीक है ना। कर में माला रखते हैं और मन में तरह तरह का ये सब करते हैं, तब तो क्या हुआ? इसलिए कहते हैं ना, મનના રંગાયો, રંગાયે જો ભી કપડા, કપડા તો રંગ દિયા. એક મિનિટ રાખા, મેં ઘર છોડ કરકે ચલે જાઓ, અફર કી ચિંતા કરતે હુએ લાલ કપડા ભી પહેન લો. ક્યા કરતે હૈ લોગ, હમને દેખા જે 20 વર્ષ, 30 વર્ષ તક, 40 વર્ષ તક, 60 વર્ષ કી ઉમર હો ગઈ ઓર સંન્યાસ છોડ કરકે ચલે જાતે હૈ. ઓર હમારે ભારતીય લોગ નહીં, ભારતીય લોગ वो तो बस एक बार जो कर लिया, किंतु उनके फेर में, दूसरे लोगों के फेर में जो आकर के सन्यासी बनते हैं, मन से सन्यासी. इसलिए 60 वर्ष की उम्र में शादी करते हैं 10-12 वर्ष की लड़कियों से, ना तो सन्यास है, ना वैष्णव धर्म है, ना कुछ है. इन लोगों को कुछ लोगों ने साधु समझ रखा. गोकुल नगरी नहीं पहुंचने का कहते हैं क्या, यदि जो ऋषि सेवा तुमने की तो हम तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा बैकुंठ का देते हैं और लिख करके दे देते हैं उनको. वो नहीं समझते कि हमारे ऊपर में सब कोई हमारा शासन करने वाला है, हमें पीस करके शासन कर देगा, ये नहीं समझते. दूसरों को ठगते हैं और पासपोर्ट वीजा देते हैं. उनको न तो लज्जा है, न हया है, न बतलाओ तो पासपोर्ट दिशा देने लगी बैकुंठ में जाने का. ये किसी ने, हमारे आर्य ऋषियों ने किसी ने नहीं दिया. भगवान के नाम पर साधन भजन से ही होता है. इसलिए ये सब चीजों को पहले मन को ठीक करना है. इसलिए मन को ठीक किया जाएगा कैसे, शरणागति के द्वारा. पहले शरणागत हो भगवान के चरणों. भगवान सब कुछ देखता है. एक बच्चे को उसके मास्टर ने कहा, 5-6 बच्चे थे, ये मिठाई देता हूँ तुमको और वहां खा लेना जहां पर कि कोई नहीं देखता हो. सबको दे दिया. कुछ बच्चे गए और घर के कोने में जहां कोई नहीं देखता है वहां पर खा लिया. और एक बच्चा लौट करके बहुत देर के बाद में आया, उसने खाया नहीं, हाथ में लड्डू. कहिए तुमने खाया नहीं यहाँ, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जो कोई नहीं देखता. नहीं प्रभु, हमने देखा ये सब जगह भगवान देखता है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है. कहे तुम ठीक है, तुमको साथ ठीक, हमारा तुम ही शिष्य, एक ही लाख तुम ही शिष्य है. ऐसे ही इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो. कैसे करोगे, भगवान के चरणों से निकालो. आत्मनिर्वेदन मैंने अपना आत्मा का निवेदन, शरीर का, आत्मा का, मन का, तन मन वचन आपके चरणों में उछावर कर दिया. हमने उछावर कर दिया तो फिर चिंता की चीज थी, कहाँ खाऊंगा, कहाँ करूंगा. जब हमने आत्मनिवेदन नहीं है तब तक ये चिंताएं हैं. इसलिए हम लोग कभी आत्मनिवेदन नहीं हुआ, इसलिए पहले आत्मनिवेदन करो. पहले आत्मा का क्या निवेदन करेंगे, पहले आत्मा तो जानते ही नहीं कि आत्मा क्या है. ये शरीर को समझ रखा जे मैं, ये तो 2 दिन के बाद में इस घर को खाली करना पड़ेगा. नहीं करेगा तो वो छप्पर गिर करके ये घर ही खत्म हो जाएगा. तुम नहीं करेगा तो 1 सेकंड में कैसे खाली कराया जाता है वो जानता है. इस घर को ऐसा बना देगा उसमें रह नहीं सकते, अपने आप छोड़ करके भागना पड़ेगा. इसे उसके चरणों में पहले शरणागत हो. इस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनके पास में जाकर सीखो, समझो, घबराओ मत. इसलिए काम को लो मत लो, ये भी जाएगा भगवान के भक्ति से ही जाएगा, हरिनाम के द्वारा जाएगा, भगवान की कथाओं को सुनने से जाएगा. समर्पित होकर के भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान का नाम करो. एक नाम भी करेगा तो वो तुम्हारा ठीक रहेगा. और समर्पित आत्मा ने दिन भर करेगा कुछ भी. इसलिए पहले शरणागत हो, तब तक गोकुल नगरी आए और नहीं तो लाखों मील दूर है आगे. तो डर लगता है रात में. क्या अज्ञान, ये अंधकार है. गुरु जी का प्रणाम मंत्र है ना, अज्ञान तिमिरांध, अज्ञानता ही अंधकार है. उसमें आऊं तो डर लगता है। क्या डर लगता है? हमारा धन नष्ट हो जाएगा, हमारा संसार नष्ट हो जाएगा, इनका छोड़ने का पाप लगेगा, तरह तरह। ये हम अज्ञान का अंधकार, भगवान को जानते नहीं, ये अंधकार हमारे अंदर में ही यहीं पर है, अणु अणु में व्याप्त है, उसको नहीं पहचानते। अपना तत्व, जीव तत्व क्या है, इसको भी नहीं समझते हैं। मैं कौन हूँ, कभी कहते हैं कि अहम ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म हूँ, और न जाने कभी कभी बिल बिलाते हैं, रोते हैं, थोड़ा सा कोई दुख आ गया, बस हो गया, ब्रह्म निकल गया। भक्ति किसको कहते हैं? और भक्ति कोई भक्ति समझ लिया और कहा मैंने 50 वर्ष तक भक्ति की है, मैं सब समझता हूँ, और 1 सेकंड का उन्होंने कहा भक्ति चली। और ये माया क्या है? इन चारों तत्वों को नहीं समझना ही अंधकार है। गुरु उसको दूर करता है, रू रू मैंने अंधकार, रू मैंने उद्गम करता है, इसलिए वो गुरु है। जिस खुद ही जिसको प्रकाश नहीं, वो दूसरों को क्या प्रकाशित करेगा? वो गुरु और चेला दोनों दूर बढ़ते हैं। भागवत में लिखा, जब थी उपनियमा ते अपनी स्वतंत्रता पूरे दाम नहीं बचता। एक अंधा व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति को पकड़ करके कहा, चलो चलो तुमको दिल्ली दिखला लाए, और एक बहुत गड्ढा उसी में गिरा, वो गुरु और चेला दोनों उसमें दूर करे। तो जो खुद ही रास्ता नहीं जानता है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, जो रास्ता नहीं जानता वो दूसरों को क्या दिखलाएगा? पहले तो समझो, तो पहले पहले देखो जिसे कौन हमको सिखला सकता है। प्रभु से प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए वो ऐसा सिखाते। इसलिए पहले ये तत्वों का जो अज्ञान है ये पहले दूर हो, इसके बाद में हमको भक्ति करनी है। कैसे कैसे आरंभ करेंगे भक्ति? एक आदमी था, गुरु के यहाँ गया, 50-60 वर्ष का, बहुत बुद्धिमान विद्वान आदमी। गुरु के पास में पहुंचा कि गुरु जी हमको कुछ ज्ञान दीजिए, अपना शिष्य बना दीजिए। ठीक ठीक है बेटा, तुमको दे दें, जरा गंगा में स्नान करके आओ, आशी में गंगा है। स्नान करके आ रहा था, इतने में अपनी एक नौकरानी, मैंने वहां पर झाड़ू देने वाली, उसे कहा, देखो ये आदमी स्नान करके आएगा और पवित्र कोई चीज, पत्ते और फूल यहाँ ले करके टोकरी में रखना, अब बहुत दूर से ऐसा फेंको जो उसकी धूल उसको लग गया, और तुम वहां से भाग गया ना, मैं तो तुम्हें मारेगा। तो वो स्नान करके आ रहा था, उसने झाड़ूदारी ली, कुछ पत्ते धूल उस बरत करके, और उसे बहुत दूर से ऐसे मारा क्योंकि धूल हुई और कुछ, और वो लकिया हाथ में लेकर के उसे मारने का, ये तो भाग गई कहीं, आज तुम्हें पाता तो तुम्हें पीट करके दुरुस्त कर देगा। मैं स्नान करके गुरु दीक्षा लेने जा रहा है और तुमने धूल उड़ा दी और ये गंदा हमारा शरीर कर गया। फिर स्नान करके फिर आया, गुरु जी ने कहा अभी जाओ, अभी 10-12 वर्ष के बाद में आना, अभी तुम्हारा ये शैतान क्रोध अभी दूर नहीं हुआ है, इसको दूर करके तब आना। लौटा दिया, वो चला गया। फिर आया 12 वर्ष के बाद में, बहुत संभाल करके आया, कहे जाओ गंगा स्नान करके आओ। फिर करते से आ रहा था, इतने में नौकरानी को कहा इस बार जरा निकट में फेंकना, मारेगा तो नहीं किंतु सावधान रहना, जरा हट जाना वहां से। फिर वो आ रहा था, इतने में उसने पत्ते और कुछ फूल लेकर के जरा धूल में फेंक दी, जो उसके शरीर में थोड़ी सी धूल लग गया। इस बार ऐसे देखा तो उससे फिर आ गई थी, फिर आ गई तो उसे आंख लाल हो गया, किंतु कुछ कहा नहीं, अस्कुलत होकर के देखा, फिर लौट गया स्नान कर गया। जाओ अभी 12 वर्ष और जाओ। 12 वर्ष के बाद में फिर स्नान करके आ रहा था, इसको कहा इस बार पत्ता और धूल उसके सिर पर डालना, किंतु थोड़ा सा सावधान रहना, मारेगा नहीं कुछ करेगा नहीं, किंतु सावधान रहना। तो इस बार जब स्नान करके आ निकट आया, निकट आप देखते हैं उसने टोकरी का धूल और पत्ते सब उसके सिर पर उड़ेल दिए, और थोड़ी सी हट करके खड़ी हो गई, वो उसके चरणों में गिर गया। पहले गुरु तुम हमारी थे, ये क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु था, तुमने हमारे मन के क्रोध को दूर कर दिया। अब मेरा मन शांत हो गया, स्नान करने के लिए जा रहे, गुरु जी ने कहा स्नान करने की जरूरत नहीं, पवित्र हो गया, बिना स्नान किए आ जाओ। शांत तो ये है, पानी का स्नान स्नान नहीं है, स्नान क्या है, मन की बुराइयों को, क्रोध को, काम को, लोभ को, चंचलता को, सबको छोड़ देना, ये तो स्नान है ना। इसलिए ये पहला स्नान है, गुरु जी को देखता है। गुरु जी ने कहा स्नान की जरूरत, तुम्हारा स्नान हो गया, आ जाओ। उनको कृष्ण मंत्र की दीक्षा, किंतु देखो ये भी कहा तो एक उदाहरण के लिए, किंतु मन ऐसा दूर नहीं होगा बिना भगवत भजन के। ये तो जितना भगवत भजन आता जाएगा, मन चंचलता दूर हो जाएगी, काम क्रोध लोभ मद अपने आप धीरे धीरे कुत्ते के समान गुण दबाते हुए। आरंभ का तो जहां जिस स्थिति में है उसी स्थिति से घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, मन से घर छोड़ो, ये बात भी है, शरीर से छोड़ करके क्या आएगा, फिर नया घर बस आएगा ना, रहने के लिए कुछ चाहिए तो एक पेड़ के नीचे रहेगा, आएगा ये पेड़ मेरा है, एक कुत्ता आएगा जैसे दूसरे कुत्ते लेकर के लड़ने लगता है ना, उस छाया में पेड़ के नीचे तू रहेगा, दूसरा आदमी आ जाएगा, कहिए ये मेरा है भाई, ये मैंने यहाँ पर तंबू लगा रखा है, मड़ैया लगा रखा है, ये तुम्हारा है, तो गाजा हमारा ही है, उसी के लिए लड़ेगा। इसलिए ये सब चीजों को समझो मत करके, नहीं तो गोकुल नगरी बहुत दूर है, ये अंधकार है, अंधकार आने से डर लगता है, और यदि आऊं और हजारों लोग देख रहे हैं तो उस समय में लज्जा आती है, क्या लज्जा आती है, अरे तुमने घर छोड़ दिया, तुमने ऐसा कर दिया, ये लज्जा की बात है, तो लोगों को देख करके लज्जा आएगी, कहां रात में जा रही है, कहां ये दिन में लोग देखेंगे नहीं, कोई गोपी कह रही है, सहेली कह रही है, रात में जाऊं तो डर लगता है, और दिन में जाऊं तो लोग कहेंगे अरे कहां जा रही, कृष्ण के पास में जा रही है, कन्हैया के पास में जा रही है मिलने के लिए, वो भी बड़ी गड़बड़ की बात है। आप भाई भजन भी करो तो ऐसा करो, कोई को सुगंध ना मत लाने दो, गंध मत लगने दो, मैं भजन करता हूं, इस तरह से घी गंदी होकर के तो मालिक मत कर दो, अपने मन को सबको गुरु के चरणों में दे दो, वो जैसे चलाता है वैसा चलो, इसलिए रात में चलो, क्योंकि अंधकार है, अंधकार माने ज्ञान नहीं है, अब दिन में चलो तो दूसरे लोग देखेंगे, इसलिए वो भी नहीं क्या करूं सोच रहा है, इसी समय गुरु की जरूरत है, गुरु था पक्षी के एकदम निर्देशन तक ले जाओ, वही गुरु गुरु है, सुधरा हुआ है, उसकी सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं, इसलिए गुरु अधिकांश रूप में मुक्त पुरुष नहीं होते, ये संसार को छोड़ करके चले गए हैं, जो सब समय कृष्ण की सेवा में नियुक्त है वो लोग नहीं, बल्कि इस जगत से जो मुक्त होकर के गए हैं वो लोग आकर के यदि करें तब तो वो गुरु, क्योंकि इस जगत से जानते हैं, इसलिए मध्यम अधिकारी गुरु होता है, तो पुरुष भी नहीं, उत्तम अधिकारी भी नहीं, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी देखते हैं कि सभी लोग भजन कर रहे हैं, और कनिष्ठ देखता है कि कोई नहीं भजन कर रहे हैं, ये हम मैं ही भजन करता हूं, ठाकुर जी की पूजा करता है, स्त्री घर कार हमें एकदम आशक, और कोई महात्मा साधु चाहे जाए यथार्थ में, सुखदेव गोस्वामी भी जाएंगे तो वो ठाकुर जी की उतरी हुई माला एक तो उनको देगा नहीं, उसको देगा सभी लोगों, और यदि बाई चांस दे भी दिया तो ऊपर ऐसे छोड़ेगा जो मानो उसको छू जाएगा, हम लोग जाते हैं कभी कभी तो देखते हैं ऐसा, उसको ना तन तत्व का ज्ञान है ना कुछ का ज्ञान नहीं, और सब प्रकार का पवित्र पान भी छिबा रहा, मन भी पूरा सब कुछ, सभी साधु संतों को ऊपर से माला ऐसे छोड़ेंगे जैसे भारी छू गया, छूने नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं देंगे ऊपर से छूने जाए। ये सब चीजों को समझ बूझ करके भाई भजन करो, तब तो फिर भजन होगा, तब फिर गोकुल नगरी बहुत दूर नहीं है, निकट में है, आगे का पर ये दो रूपों में कोई कृष्ण की नित्य सखी वो कह रही है अपनी सखी से, जिस समय प्रगट ब्रज में वो कह रही है यदि सखियों के साथ में कृष्ण के साथ में चलती हूँ तो मुझे शर्म लगती है। इसलिए जब कृष्ण ने बंसी बजाई पूर्णिमा का चांद आकाश मानो उसमें गुलाल लगा दिया गया हो, लाल लाल पूरब दिशा मानो कृष्ण की प्रेयसी है चंद्र की, और उन्होंने मुख में गुलाल लगा दिया और उस समय में उन्होंने बंसी बजाई। अजगमु अन्नो अन्नम अलक्षितोद्यमा भागवत में लिखा, कोई भी गोपी ये नहीं समझी ये हम किसी के साथ में जा रही है, अकेली दौड़ी, सभी अकेली दौड़ी, उसमें कि मैं अकेली जा रही हूँ, उसने समझा जा अकेली जा रही हूँ, उसने समझा अकेली जा रही हूँ, और लाखों गोपियां वहां पर पहुंच गई। अजगमु अन्नो अन्नम अलक्षितो, देखा नहीं किसी ने, कैसे दौड़ रही हैं, जैसे घर में चोर घुस आया और उसका सबसे मूल्यवान हार नथ दूसरे दूसरे आभूषण सोने के कंगन सब पिटारी लिया और भगा, और देख रही है वो ये हमारे सोने का सारा अलंकार इसने ले लिया और भग रहा है, वो क्या करेगी, पीछे दौड़ी, कपड़े लुढ़क रहे हैं लुढ़क रहे हैं, जो अंजन कर रही है वो अंजन करती हुई बस आंख एक आंख में लगाया और दौड़ी, जो पति की के लिए रोटी बना रही थी उसी पर रोटी तवे में रह गई और चली, कोई दूसरी सेवा कर रही थी वही तक सेवा, जो कोई गले का हार लगाने के लिए ले आई थी वो अपने कमर में बांध लिया और कमर का गले में लगा दिया, अस्त व्यस्त होकर के जो जैसे थी जहां की तहां कर दो अकेले किसी ने नहीं, और वहां जब गई तो देखा जी चल आपको, तो ये सिद्ध अवस्था की बात है। यदि वहां पर ये कह रहे हैं प्रकट प्रेम की बात, यदि सखियों के साथ में जाऊं तो ये लज्जा लगती है भाई, और यदि अकेले जाऊं तो डगर भूल जाऊं, लेकिन डगर से जानी है वहां पर, डगर है, डगर माने क्या मार्ग, वहां पर दान गली है, मान गली है, प्रेम गली है, पुण्य गलियां हैं, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कृष्ण टेढ़े उनकी गली भी टेढ़ी, उनकी डगर भी टेढ़ी, बंसी भी टेढ़ी, उसकी मैया भी टेढ़ी, मथुरा नगर टेढ़ी, वृंदावन टेढ़ा, और उनकी गोपियां भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा, तो ये सिद्ध होगी। और हम लोगों की भूमिका में यहां पर सोचने की बात है, मार्ग बड़ा भयानक है, अकेले तो चल नहीं सकते, गुरु की जरूरत है ना, बिना गुरु के अकेले गुरु भी नहीं, शिक्षा गुरु हैं, पथ प्रदर्शन गुरु करने वाले, पथ को बतलाने वाला एक, शिक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला, इनकी बिना सहायता के हम लोग इस बात में गोकुल के मार्ग में नहीं जा सकते। गोकुल माने क्या, गो इंद्रियां, इंद्रिया क्या क्या, चक्षु नासिका जीवा त्वचा, ये पांच क्या, चक्षु कर्ण नासिका जीवा, और पांच है ज्ञान इंद्रिय, हाथ पैर, हाथ पैर जीव या उदर, ऊपर उदर मैंने पेट भी ऊपर है, ये पांच, और दसवां है मन, ये इंद्रियों को कहते हैं गो, कुल माने समूह, इन इंद्रियों का समूह अभी कहां लगा हुआ है, संसार की वासना के तरफ में लगा हुआ है, जिसमें भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो वो उसको लगा देंगे कहाँ, जिसमें भगवान के चिंतन में लग जाएगा ये सब कुछ उनकी सेवा में, तब तक गोकुल पहुंच जाएंगे। और जब यही गोकुल इंद्रिया समस्त संसार में लगी हुई तब तक उतर नहीं पड़े, गुरु से भी आवश्यकता। अकेले जाऊं तो डगर नहीं, और यदि सबके साथ में चलती हूँ तो लज्जा आती है। इसलिए इसके दो प्रकार के आगे अकेलापन किसको कहते हैं, संग किसको कहते हैं। हम लोग इतने आदमी हैं अभी एक अकेले हैं, क्योंकि दूसरे का विचारधारा दूसरा, अभी सब कुछ भूल करके एक मन लगा करके हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए ये एकांत हुआ। और जहाँ दो आदमी बैठे हैं किंतु उनकी विचारधाराएं दो तरह की है, ये यहाँ पर नहीं जानता नहीं है। इधर लाखों आदमी यदि एक साथ करें, जैसे 60,000 ऋषि लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर एकांत हुआ, क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग नहीं है। और अकेले भी हैं तो मन का तो संग है ना, दुष्ट मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है उधर, इसलिए अकेले रहने पर भी अकेले नहीं है। इसलिए गुरु का संग वैष्णव का संग जारी रहा गया, उनके अनुगत्य में हम भजन करेंगे, अपना संसार करेंगे, तब तो ये ठीक दिशा में ये निर्जन है। और अकेले बैठ करके भी संसार की चिंता करते हैं, ये दुष्ट मन का संग हो गया, ये अधो पतन कराएगा। इसलिए इस विषय को भी समझ लेते हैं। गोकुल में पहुंचना है, बिना गोकुल में गए हुए शांति नहीं है। मैं वहां पर गया, बहुत अच्छी तरह से विचार हुआ, मैं जहाँ जहाँ रहा हमारी रहने की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, कौन किसने व्यवस्था की, जो स्वामी जी के समय में, उनके समय में ब्रह्मचारी थे, जो 15-20 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे और स्वामी जी की तरह तरह से सेवा की, उनके जाने के बाद में सब संसार में चले गए, कोई रास्ता दिखलाने वाला नहीं रहा। वो सब एक आदमी जिसके घर में हम लोग ठहरे थे, बेजर नाम का स्थान पहाड़ों के बीच में, और बड़ी सुंदर हरियाली, वहां पर केवल 200-250 घर हैं और सभी भक्त हैं, सभी भक्त, और वो अधिकांश भक्त स्वामी जी के समय में मठ के ब्रह्मचारी थे, जो 15-20 वर्ष तक मठ में थे, उनके जाने के बाद में सब संसार में लौट आए, कोई उनको अब रास्ता दिखाने वाला नहीं। मैं पहुंचा, सुनकर के पहले से बड़े प्रस्तुत थे, हमको वो एकदम विराट विराट धनी हो गए, अरे हरिनाम करने का तो कुछ ना कुछ फल होगा, बड़े बड़े जमींदार, कोई 250-500 एकड़ के मालिक, कुछ कोई कुछ अपना अपना बिजनेस कर लिया है, बड़ी सुंदर स्त्रियों के साथ में शादी है, सुंदर सुंदर लड़कियां और लड़के देवता जैसे देखने, किंतु संसार में कहीं सुख नहीं। अब उसके लिए तड़प रहे हैं कि हम लोग कौन क्यों छोड़ दिया, ऐसे हमने सन्यासी हमको 4-5 मिले और तो गिनती नहीं, ये कितने हैं, एक बड़े भारी सन्यास थे साइंटिस्ट, उनका नाम क्या जने रखा था, गोपी माधव पूरी, भक्ति माधव पूरी, और बड़े भारी साइंटिस्ट, बड़े विद्वान आदमी, और उनके समय में साइंटिस्टों में प्रचार करते थे। अब बेचारे सब से छोड़ करके शादी की, वो भी शादी करते वो स्त्री उनको छोड़ करके चली गई, अभी अकेले घर पड़ा संसार में, धनी मानी अभी भी काम करते हैं, उनको कितना हजार डॉलर उनको मिलता है आ करके हमारे पास में, मैंने उनको अपने इससे लगा लिया, एकदम रोने लग गए बेचारे, हमारा जीवन कैसा था, हमारा जीवन कैसा, मैंने कहा इसीलिए मैं आया, आप लोगों के लिए मैं आया, अपने लिए नहीं आया, नहीं तो वृंदावन को छोड़ करके कौन दुर्भागा जाता है वहां, इतना समय दुर्भागा जो छोड़ करके आया, किंतु मैं आप लोगों को कुछ सहायता करने के लिए आया। बेचारा एकदम रोने लगा। एक दूसरा था ऐसा ही प्रद्युम्न नाम का ब्रह्मचारी, संस्कृत कपड़ा फल विद्वान और है उधर का, और वहां पर कॉलेज में संस्कृत की शिक्षा देता है, गवर्नमेंट से काफी पाता है, देखा तो गले में माला है। अरे प्रद्युम्न, तुम वही प्रद्युम्न। स्वामी जी ने उसको लिखा था कि तुम भागवत की ये करो, ट्रांसलेशन करो, इस्कोन भर में वो अब उसको छोड़ करके संसार में चला गया। मैंने उसके गले में माला दी, वो भी रोने लगा बेचारा। और जब तक वहां था हमारे पास एकदम दोता, मैंने कहा कि तुम आ जाओ, इससे उसमें निवृत्त हो। ऐसे ऐसे कितने लोगों से भेंट हुई, जिनसे भेंट हुई है सब छोड़ करके जेल के अंदर, बड़े बड़े योग्य लोग, कोई सहारा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भाई संसार मत छोड़ो, अभी समझो ये संसार क्या है, समझने के बाद भी भगवान के नजर में आओ, अभी वहीं से सीखो। संसार बुरा नहीं है, संसार बुरा नहीं है, वो हमारे शिक्षा का आधार पाठशाला है, उसमें रह करके सीखो। और जब तक फिर समझ जाओ तब स्कूल को छोड़ करके तब संन्यास लो। इसलिए हमारे लोगों के यहाँ भारतीय सन्यासी गिरते नहीं है, पतित नहीं होते। और उन लोगों में हम समझते हैं कि 75% जीत चुके हैं, 75%। यदि रुपया का कमाना ही उनका उद्देश्य है तो तब फिर क्या है उसमें, भक्ति सीखो, भक्ति तो सीखेंगे नहीं। हमारे जाने से उनमें प्राण का संचार हुआ। मैंने कहा उन लोगों से, देखो स्वामी जी ने पौधा लगाया, बीज लगाया, किंतु वो सूखने लगा तो उन्होंने कहा जाओ थोड़ा सा पानी तो सिंचाओ। मैं पानी सींचने के लिए आया है, सब कुछ में यानी हमारी पत्तियां भरी होने लगी, अब तो उनको कुछ आशा होती है। सारे ऐसे उपेक्षित लोग, हमको तो बड़ा आनंद है, जहां जहां था ऐसे ऐसे सब लोग। तो इसलिए सब कुछ में हमारा जाना बड़ा सार्थक रहा, लोगों ने समझा, हजारों लोगों को रास्ता मालूम हुआ। अब किस देश में आए, फिर अब हरिनाम कर देता है, हमें बार बार बुला है, किंतु शरीर तो यदि चलेगा तो जाएंगे नहीं, तो हमको जाना संभव है। आप लोग भी भक्ति में बढ़िए, स्थिर रूप से, इसके बिना गति नहीं है, सुख और शांति इस जगत में भी नहीं है, उस जगत में भी शांति। राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। एक लिख करके उसके बाद में जीरो 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 दीजिए, दस गुना मान बढ़ता जाएगा। दस पहले एक, एक लिखा है एक जीरो दस, एक सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख बढ़ता जाएगा। और एक को पूछ करके लाख सुनने दीजिए, उसका कोई नहीं माने। भगवान की भक्ति करते जिसका काम को करते हैं तो उसका कुछ मूल्य है। और सब कुछ करते हैं किंतु भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए भगवान के नाम में विश्वास है। जो कुछ करते हैं वहां, जहां पर पलंग पर सोया था, बैठा था, वहां पर लिखा ना, लिखा जो लिखा था, क्या लिखा, सोचो साथ क्या जाएगा। तो जिसने लिखा वो सोच रहा है कि नहीं हमको इसमें संदेह है, साथ क्या जाएगा। और यदि सोचता भी है तो पूर्व किनारा कोई नहीं मिलता है कि क्या करूं, नहीं करूं, क्या सोचेगा बतलाओ, साथ में कुछ नहीं जाएगा तो क्या सोचेगा। इसलिए ये सब सोचना भी जाना है, जानते हैं, समझते हैं, सुनते तो हैं, किंतु अभी विज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान ही नहीं हुआ, इसलिए विज्ञान होने की जरूरत। यदि साधु संग ठीक मिल गया तो सब ठीक है, और साधु संग ठीक नहीं है तो संसार भी छोड़ करके फिर खुशी में आना पड़ेगा। आज यही तक रहे, हमारी यात्रा बड़ी सुहद रही। मैं अभी ऐसा देख रहा हूं जैसे मैं स्वप्न में था। एक घंटे के स्वप्न में हमने देखा, मैं यहां से पासपोर्ट वीसा बनाकर हॉलैंड में गया, वहां पर हजारों लोग सुनने के आए। इंग्लैंड में जितने बड़े बड़े शहर हैं, इंग्लैंड में लंदन, उसके आसपास के मैनचेस्टर, भूगोल में हमने पढ़ रखा था, मैनचेस्टर, लिवरपूल, और बड़े बड़े बंदरगाह इत्यादि सब सुन रखा था, पढ़ रखा था, ये स्वप्न देख रहा। वहां से फिर जाएगा अमेरिका में गया, वहां के जितने बड़े बड़े शहर वहां पर मैं गया भाषण दे रहा हूँ, सब लोग सुना, ये स्वप्न मानो देख रहा। वहां से फिर कनाडा गया, वहां सब जगह देखा। वहां से फिर होते हुए बम्बई में आकर के अभी यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं स्वप्न देख रहा था, सचमुच में स्वप्न है।
मैं जग गया,
अब जगने पर देख रहा हूँ कहा सचमुच में कहा गया, कहा गया। ऐसे हम लोग संसार में कर रहे हैं, जिससे मैं ज्ञान की नींद खुलेगी, देखेंगे अरे ये बेकार था, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, सचमुच में है क्या। इसलिए सचमुच में अभी ये स्वप्न है। यदि भगवान का भजन करते हैं वो स्वप्न है, और बाकी सब स्वप्न क्या है। खुशी है कि अपने हमने भारतीय संस्कृति के दो शब्द दोनों के कान में डाला है, जो स्वामी जी ने दिया था उसको लोग भूल रहे थे, उसका गलत अर्थ लगा रहे थे। बस ईंटों को जोड़ करके मंदिर बनाना ही भक्ति है, बस तो बनाने वाले कहाँ गए, इन्हें यही भक्ति नहीं है। हृदय की जो भावना है, हृदय का जो प्रेम है, मन का जो स्रोत है, भगवान के चरणों में ऐसे लग जाए कि छुटाए भी न छूटे, चित्त की वृत्तियां अपने आप भगवान की तरफ में दौड़ती रहे, इसका नाम है भगवान। इसके लिए जो कुछ किया जाए वो है भगवान। अपने लिए कुछ तनिक भी नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए इसको समझना चाहिए। हमने इस चीज को समझाने की चेष्टा की, मन को आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करना, इस व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं हो सकता। इस तरह से हमने हरिनाम करने की, हरिनाम की महिमा, भक्ति की महिमा, भक्ति का स्वरूप क्या है, इसको चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के संवाद से थोड़ा सा देने की चेष्टा की। यद्यपि योग्य तो नहीं है, काफी देने की चीज है। इसी तरह से मैंने कहीं सनातन गोस्वामी जी का उपाख्यान, सब कुछ हमारी आत्मा में ही है, कहीं ढूंढना नहीं है। भगवान ने सारी निधि घर के कोने में गाड़ दी है, पिता ने जैसे गाड़ता है, और वो चला गया, पुत्र समझता है कि मैं दरिद्र हूं। कोई आया ज्योतिषी, कहा जे अरे तुम्हारे घर में बहुत धन छिपा हुआ है, तुम दरिद्र नहीं है ना। देखो पूरब में खोदना, पश्चिम में खोदेगा सांप निकलेगा, दक्षिण में खोदेगा यक्ष निकलेगा, तुम्हें खा जाएगा। और पश्चिम में खोदेगा वहां पर बहुत से जानवर निकल करके तुम्हें विष से काटेंगे, मर जाएगा। और पूरब में थोड़ा सा खोदेगा तो उसमें से कलश में भरा हुआ सोने की अस्तरफियां निकलेगी, माने भक्ति निकलेगी। ये तो दिशा भक्ति है, कर्म ज्ञान योग तपस्या ये सब उसी दूसरी दिशा है। इसलिए सहज रूप में भगवान का नाम करते हुए जो कुछ करो भगवान के लिए करो, करते हुए सहज रूप में भगवान के लोग जो बहुत दिन से भक्ति छोड़ करके थे, भक्ति में कुछ नहीं है, इधर उधर सुन रहे थे, वो सारे लोग नए नए लोग जिसकी भाषा में नहीं जानता, फ्रेंच फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, इटली के लोग, यहाँ तक कि पोलैंड के लोग जो, और रशिया के लोग भी वहां पर पहुंचे, हॉलैंड बीच में है, इंग्लैंड से भी लोग हैं, जिनकी बोली में ही नहीं जानता, और सब लोगों को दो भाषियां भी थे, अंग्रेजी में बोलता था उसी छोटी भाषा, और वो लोग दो भाषिया उनका ट्रांसलेशन करते थे। वो लोग भी नजर कैसे बदल गए और हरिनाम करने लगे, हरिनाम किया, पुराने वाले भी लोग उसने आगे जहां गया बड़ा स्वागत मेरा किया, बहुत आदर किया। मैंने कभी सोचा नहीं, सचमुच में मैं ऐसा ही अभी देखा हूं, तो मैंने स्वप्न देखा, ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। हमारे भारत के लोग जब जाते हैं प्रचार में, स्वामी जी को कितना कष्ट करना पड़ा, एक पैसा नहीं। और जहां पर गया वहां पर देखा एक पेड़ है, वहां पर पार्क बने हुए हैं, और वहां पर वो जाकर के करताल लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्ण नाम करते। पहले हिप्पी लोग आए, हिप्पी कौन, दिन रात मदिरा पान करते हैं, अपवित्र बने रहते हैं, उनका घर रहने का नहीं है। देखा न्यूयॉर्क शहर में सड़कों पर हमारे जैसे लोग वहां पर सोए रहते हैं, सड़कों पर उनका घर नहीं है, खाने का नहीं है, भीख मांगते हैं, ऐसे भी लोग। तो हिप्पी लोग उनमें से जब ये कीर्तन करते थे वो नाचते थे शराब पीकर, और इनको शराब अपना मित्र समझ करके शराब का बोतल ऐसे देने के लिए करते, उसमें भी स्थिर रह करके धीरे धीरे उनको बदल दिया, हैप्पी हिप्पी से हैप्पी बना दिया, और अंत में कितना प्रचार किया कुछ दिनों में। और हम लोगों के लिए बनी बनाई प्लेटफॉर्म मिली, रहने के लिए स्थान मिला, ऐसा स्थान जो हम भारतवर्ष में कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा घर उन लोगों के लिए गोदाम घर, ऐसे मार्बल की चमकती हुई नहीं कौन सा इटालियन पत्थर या क्या, पैर फिसल जाए, आंख भी चमक जाए, ऐसे ऐसे घरों में ले गए और आदर भजन करने में लगे। इस तरह से मैं जहां गया वातावरण ही एकदम भक्ति का हो गया, ऐसे समझा जाए ये वृंदावन ही है। सब हमको कहीं मालूम नहीं है कि अमेरिका है, हमसे प्रतिज्ञा करवा दिया अभी वर्ष में आएंगे, फिर
आने नहीं देंगे।
इस तरह से बड़ा सुखद आचार है, हमको कुछ मालूम नहीं कि कोई किसने विरोध किया कि क्या किया, कहीं हमको सिगरेट का गंध इतना जगह हमें घूम करके आया तो हमको सिगरेट की गंध नहीं आई, प्याज लहसुन की खुशबू नहीं आई, न कि किसी चीज का, यहाँ तक कि एरोप्लेन में सारी व्यवस्था हम आदमी विशेष विशेष करके होती थी। यहाँ पर आया तो कुछ कुछ मिल रही, वहां पर देखा कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ है, वहां पर कहीं जैसे हूँ मैं समझता हूँ कि हमारी यात्रा सफल रही, और कुछ विरोध नहीं होता है तो वो प्रचार ठीक से जमता नहीं। और भारतवर्ष में हम लोगों का अभ्यास है, यहाँ पर 10,000, 20,000 आदमी आते हैं श्रोताओं में नेतृत्व इत्यादि, और वहाँ पर सफरी सभा में प्रश्न करेंगे, यहाँ तक प्रश्न करेंगे ये हबड़ा पुल के में नीचे गंगा जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ हैं बतलाओ, ऐसे प्रश्न करेंगे। ये पूछेंगे शकुनी से अर्जुन का क्या रिश्ता था, ये पूछेंगे, और कुछ तत्व की बातें भी पूछेंगे। और हम लोगों के साथ में 8-10 ब्रह्मचारी, 20-25 ब्रह्मचारी और सन्यासी सब मिल करके जाते हैं, और सभाएं बड़ी बड़ी होती है। यदि हम लोगों का तो अभ्यास है, प्रश्न करते हैं उसका उत्तर देते हैं उल्लास के साथ में, और सब जमता है वो सभा जम, तो वहां के लिए ये कोई विशेष बात नहीं। एक बार गुरु जी के साथ में गए, गुरु जी ने सभा में कह दिया, आसाम की खड़ी हुई सभा थी, आसामी भाषा वो लोग मांस मछली ये सब खाते हैं, और गले में तुलसी माला भी है, तिलक भी करते हैं और भागवत भी पढ़ते हैं, कभी खान पान से क्या करते हैं। गुरु जी ने संभाष वहां पर भाषण दिया, जो लोग मांस मछली खाते हैं और शराब पीते हैं, रास्ते की जो नालियां होती हैं पैखाने की कट्टी की नाली, वो ऐसे नाली ये है उनका, वो लोग बिगड़ गए। और सभा में कहा जब चैतन्य महाप्रभु कौन है, आप लोग कहते भगवान उसका प्रमाण दो, और ऐसे ऐसे कुछ, और उसी सभा में गुरु जी ने कहा प्रमाण दो, बस त्रिविक्रम महाराज जी बाम महाराज जी उठे और एकदम झड़ा जब 30-40-50 समाज देने लगे, और एकदम सभा जमी, वहाँ के आधे लोग हम लोगों के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा यदि पत्थर और ये सब छोड़ेगा तो हम लोग भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और डंडा लेकर के खड़े हो गए, अपने आप चारों तरफ में हजार माइल में उसका प्रचार हो गया, जो गौड़िया मठ वाले आए हैं और प्रचार हो रहा है। इस दर्शन आप लोग भी भजन करेंगे, दूसरों से कराएंगे, इससे बढ़कर क्या होगा? इसी से मन शांत होगा, इस जीवन में सुखी रहेंगे और अगले जन्म में। कहते हैं वेद का एक मंत्र है, मां तमसा ज्योतिर्गमय। मां तमसा अंधकार के तरफ में नहीं, ज्योति की तरफ में बढ़ो। अंधकार क्या है? ये संसार अंधकार। ज्योति क्या है? भगवत तत्व ज्ञान और भगवत भक्ति, उसके तरफ में बढ़ो। मां तमसा अंधकार। अभी 4 महीने पहले जिसको यहां पर देख रहे हैं, एक उड़ान में कूद जाए, जम पकड़ जाए तो 7 समुद्र पार हो जाए। अब आज इनको 3-4 आदमी का सहारा ले।